मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुगंध कुमार वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, शशांक शुभ्रीत मोकामा बिहार से, मोहम्मद मदस्सिर हुसैन मेरठ उत्तर प्रदेश से, निशांत आनंद मोकामा बिहार से, अनुराग वर्मा कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार आप भी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, सीमा उन्नाव उत्तर प्रदेश से, दीपक कुमार रे सारण बिहार से और विनायक राज बांका बिहार से। तो सुगंध, शशांक, मोहम्मद मदस्सिर, निशांत, अनुराग, अजय, सीमा, दीपक और विनायक, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के बाद मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं नानू राम चौधरी को, जिन्होंने राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस में सफलता प्राप्त की है। ये हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो नानू, इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, आइए अब हम आते हैं अपने रूटीन के सिस्टम पर, और वो सिस्टम है न्यूज एनालिसिस। और आज हम लोग न्यूज एनालिसिस की बात न करके, जैसा कि मैंने फ्राइडे को आप लोगों से वायदा किया था, मैं एक अलग ही टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। न्यूज फ्रेंड्स आप लोगों ने सुन ली है, अखबारों की क्लिपिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। एक दो बातें मैं खासकर आपके ध्यान में लाऊं। पहली तो यह कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति हमारे यहां यात्रा पर आई हुई है। थोड़ा देख लीजिएगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मैं जरा सा मिस कर रहा हूं। हमारे देश की यात्रा पर आई हुई है और भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं अभी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत ज्यादा मायने रख रहे हैं, खासकर तब तो जबकि पाकिस्तान चीन की तरफ बहुत तेजी से झुकता चला जा रहा है। मतलब चीन अपने प्रभुत्व को इस क्षेत्र में बढ़ाता चला जा रहा है, वो श्रीलंका को भी अपने में मिलाने की कोशिश है, नेपाल के साथ उसके काफी नजदीक के संबंध हो गए हैं, ये हमारे पड़ोसी देश ही हैं, और बल्कि बांग्लादेश में भी उसने अपनी संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बांग्लादेश ने भी उधर थोड़ा सा हाथ बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारत को थोड़ा अतिरिक्त सतर्क होना पड़ेगा और अपनी विदेशी रणनीति को थोड़ा ज्यादा, ये कह लीजिए, व्यावहारिक दोस्ताना गहराई में ले जाना होगा। तो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं। आपके सिलेबस में भी देखिए तो भारत के पड़ोसी देश उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है और बांग्लादेश हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश ही नहीं है बल्कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश उसी की निर्मिति है। तो बांग्लादेश वैसे भी भारत के साथ थोड़ा अटैच्ड फील करता है। अगर आज हम कहें कि आजादी के बाद, आजादी से पहले भारत तीन देशों का मिश्रण था, उसमें आपका एक हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान और तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश। भले 1947 के विभाजन में विभाजन केवल दो देशों के रूप में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। मित्रों, इस पर मैंने शुरू में भी आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, आज भी मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट्स हैं, इस पर आएंगे भी। मैं इस पर बात इसलिए अभी नहीं कर रहा था कि संधियां हो जाएं, जो भी समझौते होने हैं वो समझौते हो जाएं, संधियां कह रहा समझौते हो जाएं, इसके बाद हम लोग उस पर बातें करेंगे। तो मैं इस पर बाद में कभी बात करूंगा। ये जो क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज इन क्लिपिंग्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है दोस्तों, जो रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड जो स्थापित करने की बात सरकार ने कही है उसको लेकर के छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है और बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस मेन्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि एक सामान्य सी ही बात होगी। ये मैं आपको 2013 से अभी तक के जो क्वेश्चंस पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं उनके विश्लेषण करने के बाद बता रहा हूं, तो उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरी कोशिश होगी कि उसका जो हिंदी वर्जन है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊं। मित्रों, इसके अतिरिक्त और दूसरे जो आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल कमेंट हैं आप लोग देख लीजिएगा। एक और थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है और आगे देखिए कि वो क्या रूप लेती है कि अमेरिका ने सीरिया पर अटैक करने के बाद कुछ ठिकानों पर आपने देखा कि केमिकल वेपन्स के विरोध में अमेरिका ने कदम उठाया था, अब उसने अपने बेड़े उत्तरी कोरिया की ओर भेज दिए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। आपको मालूम है कि उत्तरी कोरिया जो है ना बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म का तानाशाही राष्ट्र है और उसने परमाणु परीक्षण भी कुछ ही समय पहले किए थे जिसकी पूरी दुनिया ने विरोध किया था, और तानाशाही ऐसा है कि वो किसी की सुनता उनता नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब अमेरिका के बेड़े उधर गए हैं और अगर कहीं ये तनाव बढ़ा तो पता नहीं क्या रूप होगा, इसका अंत किसमें होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है, तो इससे संबंधित जो भी खबरें आए आपको पढ़ने को मिले तो थोड़ा सा आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। तो मित्रों, अब मैं न्यूज एनालिसिस वाले पार्ट पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, अब मैं आता हूं नैतिकता वाले प्रश्न पर जिसकी चर्चा हम लोगों ने, जिसकी घोषणा कह लीजिए कि मैंने शुक्रवार को अपने डेली ऑडियो लेक्चर में की थी। फ्रेंड्स, मैं दो पॉइंट्स को लेकर आपसे नैतिकता के बारे में बात करूंगा, एक किसानों की कर्ज माफी और दूसरा रविंद्र गायकवाड़ जो उस्मानाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन घटनाओं को जो अभी एयर इंडिया में जो घटना घटी थी उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो टॉपिक है नैतिकता, इसके वेटेज के बारे में बताऊंगा। वेटेज इसलिए फ्रेंड्स कि ये मानकर चलिए कि अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी एक रणनीति के तहत नहीं करते हैं और एक सिस्टम में नहीं करते हैं, रणनीति के तहत कहने का मतलब है कि किसे कितना वजन देना है, किसे मिडिल में रखना है, किसे छोड़ देना है, सामान्य रूप में पढ़ना है, ये रणनीति कहलाती है। तो हम देखेंगे कि नैतिकता को आपको कितना वजन देना है, ये कितना वेटेज रखता है आपके फोर्थ पेपर में, इसको रणनीति में कह रहा हूं। सिस्टम जब मैं बात कह रहा हूं तो सिस्टम का मतलब है कि ठीक है, आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको नैतिकता को इतना वजन देना है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से देना है, आप इसको पढ़ेंगे कैसे, कौन से सिस्टम को लेकर चलेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि इन दोनों स्तरों पर बहुत कम स्टूडेंट खरे उतर पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट। भले ही मैं कितना भी कहता रहूं, मुझे मालूम है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे फॉलो कर पाते हैं, या हो सकता है कि बहुत कम होते होंगे जो उस पर यकीन ही कर पाते होंगे, या यकीन करते भी होंगे तो वो अपनी आदतों से कुछ इतने मजबूर हैं कि वो बदल ही नहीं सकते। और मैं ये तो नहीं कहता कि बिना बदले बात बनेगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो सही और सुनिश्चित रास्ता था उसको छोड़ करके एक अनजाने से नए रास्ते का सफर आप कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे भी मंजिल मिल जाए, लेकिन अगर सरल रास्ता और सुनिश्चित रास्ता पर अगर हम चलें तो शायद हमारे लिए भी आसान होगा और मंजिल का मिलना भी थोड़ा सा इंश्योर हो जाएगा। खैर, तो दोस्तों अगर आप फोर्थ पेपर का सिलेबस देखेंगे तो फोर्थ पेपर के सिलेबस का जो आपके पेपर का जो नाम है उस नाम का पहला ही शब्द है एथिक्स, उसमें तीन शब्द है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, राइट। फिर जब आप आगे सिलेबस चलेंगे, मैं आपको सिलेबस को समझने की बात बता रहा हूं, तभी तो आप वेटेज निकाल पाएंगे ना कि इसका कितना वजन है। मैं वजन इसका बताने के लिए आपको दो चीजें केवल दिखाना चाहूंगा, आईना दिखाना चाहूंगा, यूं कह लीजिए। फिर आप देखें कि जब आप सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं, और प्लीज डू दिस, आज आप इसे करें भी, मेरी बात केवल सुनकर छोड़ मत दे। देखिए, मैं तो आपकी क्लास नहीं ले रहा हूं, है ना, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं, ये आपकी अपनी तैयारी का सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरा ये डेली ऑडियो गाइडेंस लेक्चर, ये केवल आपको तैयारी कैसे करना चाहिए उसका मार्गदर्शन बता रहा है। तो आपको इसका फायदा मिलेगा ही तब जब आप इसे फॉलो करेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलना है। थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, देखिए अगर आप सुनते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन रियल अगर आपको फायदा लेना है, तो फॉलो करिए, कुछ समय के लिए तो फॉलो कीजिए, नहीं ठीक लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर तो ऐसी बातें बताते हैं जो चौथी पांचवीं के लड़कों को बताई जानी चाहिए, हमको चौथी पांचवीं का लड़का समझ रखा है क्या। परसों मेरे पास एक मेल आया है, अब मैं क्या बता दूं कि चौथी पांचवीं के लड़के के लिए मैं कह रहा हूं या मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं, चाहे फिर पहली की क्लास की जरूरत क्यों ना हो। अगर सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए पहली क्लास के नॉलेज की जरूरत है तो मैं तो पहली क्लास की बात बताऊंगा, चौथी पांचवीं तो ज्यादा ऊपर क्लास की बात हो गई। खैर मैं मित्रों, ये अपने अपने अप्रोच की बात होती है। आप वेटेज करेंगे कैसे? हो सकता है कि आज का मेरा ये डेली ऑडियो लेक्चर वेटेज बताने में ही खत्म हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा और अच्छे से बताना चाहूंगा। आप पहला पॉइंट जब उठा करके देखेंगे तो उसमें एथिक्स की ही चर्चा है। एथिक्स है और कहीं कहीं थोड़े से वैल्यूज आ गए हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो एथिक्स से जुड़े हुए पॉइंट हैं। अब होगा क्या कि आप सिलेबस को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ठीक है एथिक्स के बारे में बस इतना ही है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको इसकी सही वैल्यू पता लगेगी। जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे जो टॉपिक दिए हुए हैं उन दूसरे टॉपिक में भी एथिक्स की बात है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट में एथिक्स के बारे में चर्चा करके उसे खत्म कर दिया गया है, दूसरे में भी एथिक्स शामिल है। जैसे आप जाइए तो आपको एक मिलेगा पब्लिक ऑब्लिक सिविल सर्विसेज, उसमें आप देखिए कि जगह जगह पर एथिक्स की बात कही गई है, जगह जगह पर एथिक्स की बात कही गई है। पब्लिक ऑब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप देखिए कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दिया सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, यहां भी आपको एथिक्स आ गया। फिर दिया हुआ अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, यहां भी एथिक्स शब्द आ गया। उसी के आगे दिया हुआ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, यहां भी आपके पास एथिक्स आ गया। इसके आगे फिर दिया हुआ एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, यहां भी एथिक्स आ गया। आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कि केवल एथिकल पॉइंट में ही एथिक्स आया है, बाद वालों में भी एथिक्स है। और यही केवल खत्म नहीं हुआ है, जब लास्ट पॉइंट पर आप जाते हैं जिसमें प्रोबिटी इन गवर्नेंस की बात कही गई है, सरकार में ईमानदारी की बात कही गई है, वहां भी आपको कोड्स ऑफ एथिक्स मिलता है, वहां भी ये शब्द है, तब आपको पता लगेगा कि नहीं एथिक्स केवल एक पॉइंट नहीं है, एथिक्स एक ऐसा पॉइंट है जो दूसरों में भी घुसा हुआ है, दूसरों में भी फैला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ये फोर्थ पेपर भले ही एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, लेकिन उसमें जो 50% हिस्सा है वो केवल इकलौते का, इवन मोर देन 50% वो केवल एथिक्स का है। चलिए ये तो सिलेबस की बात है। दोस्तों आपके पास, आपको रास्ता दिखाने के लिए चार साल के अनसॉल्व्ड पेपर तो हैं 2013 से लेकर के 2016 तक, उन्हें कभी इत्मीनान से पढ़िए। इत्मीनान शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं और यह सिस्टम से जुड़ा हुआ है शब्द है, इत्मीनान शब्द सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इत्मीनान से नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ते हैं, मन में आ जाता है तो और इसके बाद छोड़ देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि हम सबको जो हम तो चलिए मैं अपने आप को निकाल देता हूं, उन सभी स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, भले ही एथिक्स याद न हो लेकिन जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर हैं, जो सिलेबस है, वो तो रट जाना चाहिए, याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, ये कब होगा, ये रटने से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप बीच बीच में लगातार अनसॉल्व्ड पेपर को कंसल्ट करते रहेंगे। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, एक दो बार पढ़ लेते हैं बस समझ लगता है कि बस हो गया कर लिया। दोस्तों जो कंटिन्यूएशन की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने चार साल के पेपर उठा इकट्ठे किए और पढ़ लिए और उसे एक तरफ रख दिया, उस पर धूल जम रही है, ये तो रोज देखने की बात है। कि आप अखबार में भी पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में तो आप देखिए कि क्या इस, जैसे मैंने अभी बांग्लादेश की बात कही तो आप देखिए कि क्या बांग्लादेश पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछे गए तो आपके मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं देखूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए, वहां पर अनसॉल्व्ड पेपर कंसल्ट कीजिए। तो आप देखेंगे जब आप अनसॉल्व्ड पेपर जाएंगे तो हर साल सबसे ज्यादा पार्ट वन में जो हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एथिक्स पर आधारित क्वेश्चन हैं, एथिक्स पर सबसे ज्यादा। यानी कि एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कई कई क्वेश्चंस एथिक्स पर हैं, और अगर दूसरा प्रश्न भी कोई पूछा गया है उसमें भी एथिक्स शामिल है। जैसे मैंने कहा सिविल सर्विस एथिक्स, एथिक्स के कोड, इंस्टीट्यूशन में एथिक्स, आप देख रहे हैं। तो उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी एथिक्स होगा। अब इसका पार्ट बी में देखिए दोस्तों, अगर आप ये मान करके चलते हैं कि आपके फोर्थ पेपर का 50-60% जो सिलेबस है एथिक्स से जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके केस स्टडीज आते हैं। इसका मतलब हुआ कि पार्ट बी में भी जो केस स्टडीज दिए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जोर होगा वो एथिक्स पर ही होगा। यानी कि आप जब पार्ट बी में कोई भी निर्णय लेंगे, वो तो आपसे डिसीजन ही मांगते हैं ना कि अब आप क्या सलाह देंगे, आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे, यही पूछा जाता है। तो बाकी सारी चीजें भले ही दरकिनार हो जाएं, लेकिन एथिक्स वहां मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो फोर्थ पेपर आप देख रहे हैं कि एथिक्स पर कितना ज्यादा जोर दे रहा है। यानी कहीं भी एथिक्स से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आप चाहे किसी को कोई सलाह दें या खुद के लिए कोई कदम उठाएं, निर्णय लें, उसमें एथिक्स होने चाहिए। अगर आपके निर्णय एथिक्स से परे होंगे तो मान करके चलिए कि आपके डिसीजंस भी सही नहीं माने जाएंगे। ये है एथिक्स का वेटेज जो आपके पूरे के पूरे फोर्थ पेपर में बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है, सिलेबस में भी दिखाई देता है, जो क्वेश्चंस पेपर्स आ रहे हैं उसमें भी दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, यहां मैं आपका ध्यान थोड़ा इस बात की तरफ भी ले जाना चाहूंगा कि बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ये जो फोर्थ पेपर है ये आपकी पर्सनल और पब्लिक, देखिए दोनों है, पर्सनल और पब्लिक लाइफ में आपका, आपकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो आपका एप्टीट्यूड है, जो आपको आपकी इंटीग्रिटी है, उसको केवल टेस्ट करने का पेपर है। ये आपके नॉलेज का पेपर नहीं है कि आप एथिक्स के बारे में कितना जानते हैं, इंटीग्रिटी के बारे में आपने कितनी पीएचडी कर रखी है, उससे रिलेटेड नहीं है। सोसाइटी से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, लिखा हुआ सब साफ कि कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विथ सोसाइटी, जब आप सोसाइटी से डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस समय जो आपको समस्याएं मिलती हैं और जब आप उनकी चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों का आप सामना करेंगे कैसे, वहां आप अपने एथिक्स को, इंटीग्रिटी को, एप्टीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, क्या आपके बचा के चलते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसको टेस्ट करने का पेपर है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि एथिक्स का जो टॉपिक है, अब मैं टॉपिक की बात करूंगा, फोर्थ पेपर के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ऑलरेडी वक्त हो चुका है, अब मेरे पास इतना समय शेष नहीं है कि मैं इस टॉपिक पर अब बात कर सकूं, क्योंकि इस टॉपिक को भी पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन इस पर मैं आपसे बात करूंगा, बातें करूंगा, ये मेरा वायदा है। पहले भी मैंने जब वायदा किया है तो उसे मैं पूरा करूंगा। अब डिपेंड करेगा कि यह कब संभव हो सकेगा, अदरवाइज फ्राइडे को कंटिन्यूएशन में, नेक्स्ट मंडे को हम डेफिनेटली इसी पर ही बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसे ओपन रखें, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन आती है। हो सकता है कि बीच में ही कोई अगर बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जिस पर विस्तार से बात की जा सके तो हम लोग इस पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। एक दो बातें कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स ने, जिसमें अनीश अली हैं और विनोद यादव हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है और रिक्वेस्ट की है कि मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से इस बारे में सूचना दूं, और वो है, उन्होंने कहा है कि गर्मी के दिन आ गए हैं तो हम सब बर्तन में या किसी घड़े में या जो भी पात्र हो उसमें पानी रखें बाहर पक्षियों के लिए। ये बहुत अच्छा सजेशन है। तो अनीश और विनोद, मैं आपके सजेशन का पूरा सम्मान करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मित्रों एक अच्छा सजेशन है। बाकी आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सजेशन को फॉलो करें और पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने में आगे आएं। एक बात और है मित्रों, कि मैंने इससे पहले आप लोगों से कहा था कि आप इस afeis.com के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और इस तरीके से इसमें भी मेरी मदद करें। बी इसलिए कह रहा हूं कि पक्षी को पानी देने में आप प्रकृति की मदद करें और इसमें आप एकेडमी की मदद करें, और जो भी ये काम कर रहे हैं अपने अनुभव मेरे पास मेल में लिखें और अपने सफलता की बातें बताएं, या उन्होंने जो भी कोशिश की उसके बारे में भी मुझे सूचित करें, और मैं चाहूंगा कि फिर वो बातें मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाऊं। कि उनको पता लगे कि हाँ इस तरह का काम किया जा रहा है और कौन कौन लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इस पर भी आप लोगों के ईमेल सादर आमंत्रित हैं। तो मित्रों, ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से अब कुछ मित्रों के नाम हैं। अंजना आप रेवाड़ी हरियाणा से हैं, शुभम टोपनवार, जया प्रियदर्शी, युगांत बंसोड़, अकबर अली दुबई से हैं, चंद्र प्रभाकर, किशन मेवाड़ा पालिताना गुजरात से हैं, नीतू गुप्ता दिल्ली से, इमरान हुसैन, धनंजय त्रिपाठी, अमित कुमार, सुमन कुमारी रामगढ़ झारखंड से, ऋतुराज कुमार, आनंद जानराव महाराष्ट्र से, पूजा उपाध्याय और आरती उपाध्याय आप दोनों मांडू मध्य प्रदेश से हैं, और शुभम गुप्ता इलाहाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।